शान के कानों में उसकी चीख पड़ी तो वो होश में आया और धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। वहीं आरवी भी बदहवास से उसके तरफ दौड़ गई और उसके पास जमीन पर बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उसके सर से खून बहते देखकर आरवी की आंखें बरस पड़ीं। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उसके सर पर बांध दिया और खून से सने उसके गालों को थपथपाते हुए बिखरे स्वर में बोली,
अंशु अंशु बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ आपको?
बेटा मम्मा आपके पास है, आंखें खोलो अपनी। आरवी की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, वो इससे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकी थी कि शान वहाँ पहुँच गया और उसको अपनी गोद में लेकर उसको उठाने की कोशिश करने लगा। दोनों की आंखें भीगी हुई थीं और वो अंशु को इस हालत में देखकर अपने होश गमा बैठे थे। आरवी के चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर से सुभाष जी सुयश जी दौड़े दौड़े अंदर आए और सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। अर्पिता जी भी मंदिर से भागी भागी आईं। छाया, सुभाष और बाकी के नौकर भी वहां पहुंचे, पर खून से लथपथ अंशु को देखकर हर कोई सुन रह गया था। आरवी ने जब देखा कि अंशु कुछ नहीं कह रही तो उसने डबडबाई आंखों से शान को देखा और उसकी बाह को अपनी कांपती हथेली से छूते हुए बोली,
शांतनु देखिए ना, अंशु कुछ नहीं बोल रही, मुझे देख भी नहीं रही, आप कहिए ना उसे कि उठ जाए।
शान के कानों में ये शब्द लोहे की सलाखों जैसे पिघलते हुए महसूस हुए। अब तक वो दर्द में था अंशु की यह हालत देखकर, पर आरवी की बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसके हाथ को झटक दिया और धधकती निगाहों से उसको घूरते हुए गुस्से में गरजा, बंद करो अपना ये नाटक। आरवी उसके अचानक चीखने से डर से कांप उठी और भीगी निगाहों से उसको घबराई हुई सी देखने लगी। वहीं शान एक बार फिर उस पर गरजा, उस दिन तो बहुत गुस्सा दिखा रही थी मुझ पर, बहुत फिक्र थी तुम्हें अंशु की, और दो ही दिन में सारी फिक्र सारा प्यार गायब हो गया। जब जानती थी कि वो हर पल तुम्हें अपने पास ढूंढती है और अभी उसकी हालत नहीं चलने फिरने की, तो किसके भरोसे उसको रूम में अकेला छोड़कर नीचे आई तुम? तुम्हारी वजह से वो सीढ़ियों से गिरी, तुम्हें ढूंढ रही थी वो। अगर तुम उसके पास होती तो ये हादसा कभी नहीं होता, मेरी बेटी को मुझे इस हाल में नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है, तो अपना ये नाटक बंद करो और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आरवी शान की बात सुनकर स्तब्ध सी उसको देखती ही रह गई, चेहरा आंसुओं से भीग गया, पर शान अब भी जलती निगाहों से उसको घूरे जा रहा था। शान को यूं भड़कते देखकर और आरवी की हालत देखकर सब अचंभित से उन्हें देखने लगे। अर्पिता जी की नज़र शान की गोद में लेटी अंशु पर पड़ी तो उन्होंने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, शान आरवी पर गुस्सा और उन्हें ब्लेम बाद में कर लेना, अभी अंशु को हॉस्पिटल लेकर चलो, खून बहुत बह गया है। शान का ध्यान भी अब अंशु पर गया और बिना एक पल गवाए वो उठकर खड़ा हो गया। आरवी ने भी खुद को संभाला और उठते हुए बोली, मैं भी साथ चलूंगी। अभी वो बेचारी एक कदम ही आगे बढ़ी ही थी कि शान एकदम से उसके तरफ पलट गया और उसके गुस्से भरी सख्त रौबदार आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का यह हाल हुआ है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बेटी की परछाई से भी दूर रहना, अगर अब तुम मुझे अंशु के आसपास भी दिखी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो और तुम्हारी इस गलती की इतनी खौफनाक सजा दूंगा कि रूह भी कांप उठेगी तुम्हारी। आरवी का रोम रोम कांप उठा, उसने भीगी निगाहों से उसको देखते हुए रुंधे गले से कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मुझे? मैं माँ हूँ अंशु की और उन्हें ज़रूरत है मेरी, फिर कैसे आप मुझे उससे दूर रहने को मजबूर कर सकते हैं? माँ नहीं हो तुम उसकी, और आज तुमने खुद ये साबित कर दिया। अगर तुमने अंशु को अपनी बेटी माना होता, अगर तुम्हें उससे थोड़ा सा भी प्यार या लगाव होता, उसकी ज़रा भी फिक्र होती, तो मेरी बीमार बेटी को अकेले रूम में छोड़कर नहीं आती और ना ही ये हादसा होता। इसलिए दोबारा कभी खुद को उसकी माँ मत कहना, क्योंकि माँ नहीं हो तुम उसकी। शान गुस्से में चीखा, उसको एहसास ही नहीं था कि वो क्या क्या कह गया और गुस्से में कही उसकी बातों का आरवी पर क्या असर होगा, उसको कितनी तकलीफ होगी। शान नफरत भरी निगाहों से उसको घूरते हुए गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अर्पिता जी के इशारे पर छाया दौड़ते हुए उसके पीछे गई और अंशु को लेकर पीछे बैठ गई। शान ने स्पीड में गाड़ी घुमाई और कुछ ही मिनटों में गाड़ी हवा से बातें करते हुए मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। शान बार बार पीछे पलटकर अंशु को देख रहा था जो बेजान सी छाया की गोद में लेटी थी। दूसरी तरफ शान की कही कड़वी बातें आरवी के अंतर मन को भेद गई थी। सब उसके वजह से हुआ ये सोचकर ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वो धम्म से वहां बैठ गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसकी हालत देखकर अर्पिता जी की आंखों में आंसू भर आए, वो उसका दुख बखूबी समझ रही थी और शान का गुस्सा भी। इन हालातों में किसी एक को भी गलत कहना नाइंसाफी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत भी दोनों थे और सही भी दोनों ही थे। अर्पिता जी आरवी के पास चली आई और उन्होंने तड़पते हुए उसको अपने सीने से लगा लिया। आरवी उनके सीने से लगी फफक फफक कर रो पड़ी, बड़ी माँ मैंने जानबूझ कर कुछ नहीं किया,
अंशु खाना नहीं खाती थी तो मैं उसके लिए उसका फेवरेट दलिया बनाने आई थी। वो सो रही थी, मैंने सोचा वो उठेगी उससे पहले दलिया बना लूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो जल्दी उठ जाए, मुझे ढूंढते हुए नीचे आने लगेगी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि मेरी लापरवाही से इतना कुछ हो जाएगा तो मैं कभी अंशु को अकेला छोड़कर नहीं आती। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे, भले मैंने उसको अपनी कोख से जन्म नहीं दिया पर अपनी बेटी ही माना है उसे। मैं सच कह रही हूँ बड़ी माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। आरवी बुरी तरह रो रही थी, शान की बातों का बहुत गहरा असर हुआ था उस पर। बिखरे शब्दों में वो अपनी सफाई दे रही थी और उसकी हालत देखकर अर्पिता जी रो पड़ी थी। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और फिर उसको खुद से अलग करके उसके आंसुओं को पोंछते हुए बड़े ही प्यार से बोली, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम जानते हैं कि आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, आप तो अंशु का भला ही सोच रही थी। हम जानते हैं बेटा कि आप अंशु को बहुत प्यार करती हैं, अगर उनकी सगी माँ होती तो वो भी आपके जितना प्यार नहीं दे पाती उन्हें और ना ही इतना ख्याल रख पाती उनका। आप तो जान छिड़कती हैं उन पर, फिर उनकी जान को खतरे में कैसे डाल सकती हैं। जो हुआ वो बस एक हादसा था बेटा, जो किसी के हाथ में नहीं था, होनी को कोई नहीं रोक पाता बेटा। जो हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था बेटा, इसलिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए। हम जानते हैं कि शान की बातों से बहुत आहत हुई हैं आप, पर बेटा वो गुस्से में वो सब कह गए। अंशु को वो अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, उन्हें उस हालत में देखकर उनके दिल पर क्या गुजरी होगी हम सोच भी नहीं सकते। वो होश में नहीं थे बेटा, उनको एहसास नहीं था कि वो क्या कह गए। जब वो संभलेंगे तो खुद आपसे अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगेंगे। उनकी हालत समझिए बेटा, वो बहुत दुखी हैं, गुस्से में कुछ भी बोल गए। उनकी बातों को दिल पर मत लगाइए और खुद को संभालिए, आपकी बेटी को ज़रूरत है आपकी। चलिए हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है। पहले तो आरवी रोती रही पर जैसे ही अंशु का ध्यान आया उसने खुद को संभाला और झट से उठकर खड़ी हो गई। अर्पिता जी ने उसके खून से सने कपड़े देखे तो उसको कपड़े बदलने को कहा पर आरवी ने इनकार कर दिया। उसको अंशु की फिक्र हो रही थी और वो बस जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहती थी। उसने शान की धमकी की भी परवाह नहीं की और अर्पिता जी सुयश जी और सुभाष जी के साथ वहां से निकल गई।
जब तो सब हॉस्पिटल पहुंचे, अंशु को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जा चुका था और अंदर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर चुके थे। शान बेचैन सा बाहर चक्कर काट रहा था और छाया एक तरफ हाथ जोड़े खड़ी थी। आरवी को वहां देखकर शान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में उसके पास आया और चीखते हुए बोला, मेरी बेटी को मौत के मुंह में भेजकर चैन नहीं मिला तुम्हें, अब क्या उसको मारकर ही दम लोगी जो यहां भी अपना मनहूस चेहरा लेकर चली आई। ऐसे मत कहिए, मैं बस उसको देखने आई हूं, उसको कुछ नहीं होगा, आरवी ने रोते हुए कहा। शान फिर से उस पर चीखने की वाला था कि डॉक्टर की गुस्से भरी आवाज वहां गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ, ये हॉस्पिटल है आपका घर नहीं, तो अगर आपको ऐसे ही लड़ना है तो बाहर चले जाइए। आरवी ने अपना सर झुका लिया। शान ने जलती नगाहों से उसको घूरा, फिर डॉक्टर की तरफ मुड़ते हुए शांत स्वर में बोला, सॉरी डॉक्टर, दोबारा ऐसा नहीं होगा, आप बताइए मेरी बेटी कैसी है, चिंता की कोई बात तो नहीं। चोट काफी गहरी है, अगर वक्त पर आप उन्हें लेकर नहीं आते या उनके चोट को बांधा नहीं होता तो खून ज्यादा बहने पर पेशेंट की मौत भी हो सकती थी। आपने समझदारी दिखाई जो उसके सर पर कपड़ा बांध दिया, लेकिन फिर भी खून बहुत बह चुका है और पेशेंट पहले से भी बहुत कमजोर थी। ऐसे में अगर जल्दी ही उन्हें खून नहीं चढ़ाया गया तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी हम उनकी हालत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर की बात सुनकर आरवी के कदम लड़खड़ा गए। पीछे हटते हटते वो दीवार से जा लगी और वहीं बैठकर खुद में सिमटकर रो पड़ी। शान को भी बहुत दुख हुआ पर उसने खुद को संभालते हुए जल्दी से कहा, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप, जल्दी से खून चढ़ाइए उसे, जो करना है कीजिए, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जितना खर्च आइए मैं उठाऊंगा, बस मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। शान पैनिक कर गया था और हालात भी ऐसे ही बन चुके थे, आंखों में नमी उतर आई थी उसके। डॉक्टर ने उसका दुख समझते हुए उसके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं, पैसों की यहाँ कोई बात ही नहीं है, नर्स को ब्लड बैंक से ब्लड लाने भेजा है, जैसे ही आता है हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और विश्वास कीजिए अपनी तरह से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी को सही सलामत आपको लौटा सकें। यहाँ डॉक्टर ने अपनी बात खत्म की और इतने में एक नर्स बदहवास सी भागते हुए वहां पहुंची और घबरा कर बोली, डॉक्टर। डॉक्टर ने पलटकर उस नर्स को देखा और उसके खाली हाथों को देखकर गंभीरता से बोली, आप तो ब्लड लेने गई थी तो खाली हाथ क्यों लौटाई और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी।